और मन में शांति ले आना, शांति में संसार रचाना। हर प्राणी का दिल पुकारा,
ओम शांति। हम सब बाबा के साथ साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी हैं, विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। अभी भी आप सभी यज्ञ सेवा में आए हुए हैं ना, तो चाहे स्थूल या सूक्ष्म हम बाबा के कार्य में सहयोग देते हैं और साथ साथ अपना भाग्य भी बनाते हैं। तो मनसा के द्वारा तो हम विश्व सेवा सभी करते हैं, विश्व की आत्माओं को सकाश देना, उनके प्रति शुभ भावना रखना, कल्याण की भावना रखना। लेकिन कभी कभी साकार में भी बाबा चांस देता है, और इसीलिए हमें इस वर्ष अमेरिका, जो दूसरी दुनिया है, नई दुनिया जिसे कहते हैं, वहां जाकर बाबा की सेवा करने का बाबा ने ड्रामा में चांस दिया। वहां वॉशिंगटन, जो अमेरिका की राजधानी है, वहां पर जो बहन है उन्होंने एक बस ली है, बड़ी बस ली है बाबा की सेवा के लिए। और वो बस एक अपार्टमेंट जैसी है, अपार्टमेंट माना एक घर जैसा होता है पूरा, तो बस के अंदर ही घर बना हुआ है। उसके अंदर पूरा एक कमरा है जिसमें आप बैठक कह सकते हैं जिसे, और एक रसोई किचन की पूरी सुविधा है, एक मेडिटेशन रूम बनाया है बस के अंदर, और एक बेडरूम भी है। इतनी बड़ी बस है वो, तो उसको सेवा के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसलिए जहां भी पूरे अमेरिका में जाकर के उनको सेवा करनी है तो वो भाई बहने एक ग्रुप बना करके जाते हैं और वहां पर वो बस को खड़ा करते हैं, और फिर एक दो दिन वहां रहना है तो वहां संदेश देने का कार्य करते हैं बाबा का। दूसरा उनका लक्ष्य है कि वो अमेरिका टेलीविजन के लिए, जैसे भारत में हम टेलीविजन में प्रोग्राम देते हैं, हमारा पीएम टीवी चलता है, वो तो भारतीय लोग ही देखते हैं। अगर अमेरिका में भी देखते हैं तो इंडियंस जो वहां रहते हैं वो ही देखते हैं, लेकिन जो अमेरिकन लोग हैं, माना जो इंग्लिश वाले लोग हैं, जो वहां के रहवासी हैं, उन लोगों तक कोई हमारी अभी इतनी पहुंच नहीं है। तो वो जो बहन है वो अमेरिकन बहन है, और उसने ऐसा लक्ष्य रखा कि हम एपिसोड्स कुछ बनाएं जो सीधे अमेरिकन लोगों को, माना अंग्रेजी में, वो बाबा का संदेश मिले। तो वो बस जहां भी जाएगी तो उस स्थान के लोगों से कन्वर्सेशन करना, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करना, जैसे शिवानी बहन और वो कनुप्रिया बहन का, उसको कन्वर्सेशन कहेंगे, माना बातचीत के द्वारा वो आपको उत्तर देते हैं और आपको ज्ञान समझ में आता है। तो इस तरह का उन्होंने ऐसे एक लक्ष्य रखा है कि हम वो उसके लिए शूटिंग करेंगे, और बस को हम जहां भी ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया था कि आप आइए और वो बस में हम सेवा करेंगे। तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन सेवा की गति और थोड़ी तीव्र होगी, आपका सहयोग होगा। तो ऐसे मैं पहले भी दो बार वहां जा चुकी हूं, तो मैं यहां से 16 अगस्त को सभी अपने बड़ों से, दादी जी से छुट्टी लेकर के निकली थी, और 17 अगस्त को मुझे अहमदाबाद से जाना था। वहां पहुंचे तो अगले दिन जिससे उन्होंने बस ली थी, वो पाकिस्तानी भाई है, उसकी पूरी कंपनी है वो, उसी तरह के बसेस वो बनाते हैं और उसका बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम उनके स्टाफ को राखी बांधेंगे। हालांकि वो मुसलमान भाई हैं और मुस्लिम लोग राखी नहीं बांधते हैं शायद, तो थोड़ा सा ऐसे डाउट था कि वो पता नहीं राखी बांधेंगे और अपने स्टाफ को भी बांधने देंगे या नहीं बांधने देंगे, लेकिन फिर भी हम बाबा को याद करके गए और उसी बस में गए हम। उनको कुछ सर्विसिंग भी करानी थी और वो मुझे रिसीव करने भी एयरपोर्ट पर उसी बस में आए। पूरा जो सेंटर के भाई बहने थे, चार भाई बहने वहां परमानेंट रहते हैं, समर्पित हैं, और चार जो हैं वो घर में रहते हैं लेकिन सारा दिन वो सेवा केंद्र पर ही सेवा करते हैं, तो समर्पित जैसे ही हैं। तो टोटल आठ जो हैं वो उनके बहुत ही सहयोगी हैं। तो सभी वो आठों जो हैं वो एयरपोर्ट पर उसी बस में आए थे, क्योंकि बस तो बहुत बड़ी है, तो मुझे अनुभव कराना था उनको सबसे पहला वो। तो उस बस में हम गए और फिर जब राखी बांधने के लिए वहां गए उनके पास, और हमने उनको सारा उद्देश्य समझाया, महत्व समझाया राखी का, क्योंकि वहां पर राखी हम इस तरह से नहीं कहते हैं कि भाई बहन का त्योहार है और एक बहन आपको राखी बांधती है। हम बाबा की ये राखी है और इस राखी से बाबा से हमें कैसे रक्षा मिलती है, कैसे भगवान हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम रक्षक हैं, कैसे उसकी दुआएं उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, तो ऐसे उनको हम समझाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बिल्कुल भी हमें मना नहीं किया और ये बहुत प्यार से राखी बंधवाई और अपने सारे स्टाफ को खुद ही बुलाया, हमें कहना भी नहीं पड़ा कि मुझे ही नहीं इन सबको भी राखी बांधो ऐसे। और फिर उन्होंने ऐसे बोला कि आप सबको देख करके बहुत अलग लगता है, क्योंकि जब भी बस के काम से भाई बहने उनके पास जाते हैं तो बोला आप और लोगों जैसे नजर नहीं आते हो, आपको देखते ही आप लोगों को शांति मिलती है हमें, ऐसा मतलब उसने आगे से ये बात कही। तो महसूस किया कि जब भी हम संगठन में कहीं जाते हैं तो लोगों को हमारे वाइब्रेशन से फीलिंग आ जाती है, जैसे हम बाबा के बच्चे बाबा की याद में ही सब कार्य करते हैं तो बाबा उनको वो पूरा अनुभव कराते हैं। तो वहां पर जो भी क्लासेस होती हैं या पब्लिक प्रोग्राम होते हैं वो वीकेंड पर होते हैं। वीकेंड का मतलब होता है शनिवार और रविवार। जो वीक डेज होते हैं उसमें सब लोग काम पर जाते हैं, मुरली भी सुनने वो सेंटर पर नहीं आते हैं क्योंकि दूर दूर रहते हैं, तो अगर वो आएंगे तो उनको ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है आकर जाने में, तो वहां पर कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुरली सुनते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब होता है कि सेंटर में माइक पर मुरली पढ़ेंगे तो सेंटर वाले तो सामने सुनेंगे, तीन चार पांच जो भी हैं, लेकिन जो भाई बहने हैं वो अपने अपने घरों में अपना कंप्यूटर ऑन कर लेंगे और उसमें वो माइक पर मतलब वहां ही उनको अपनी मुरली सुनाई देगी, तो फिर वो काम करते हुए भी सुन सकते हैं। तो ऐसे करीब 200 भाई बहने सेंटर पर नहीं आते हैं लेकिन 200 भाई बहने वहां कॉन्फ्रेंस कॉल पर मुरली सुनते हैं। तो अगले दिन क्योंकि शनिवार रविवार नहीं था मैं जब पहुंची थी, तो फिर हमने मुरली पढ़ी और ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लोगों ने मुरली सुनी। और वहां पर एक मेडिटेशन म्यूजियम भी है मेन सेंटर के साथ साथ, उनके पास का जो शहर है सिल्वर स्प्रिंग नाम है उसका और स्टेट है वो मैरीलैंड, तो वहां उन्होंने एक म्यूजियम बना रखा है। म्यूजियम वहां हमारे जैसे नहीं होते हैं, हम जैसे सभी देवताओं के चित्र बनाते हैं, कलयुग का दृश्य दिखाते हैं, और हमारे यहाँ तो सब इन लोगों इन बातों को जानते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह से नहीं समझा सकते। वहां पर जो चित्र होता है ज्यादातर वो कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र का होता है जिसमें सभी धर्मों की बात की हुई है, तो उन्होंने ऐसा ही एक म्यूजियम बनाया है जहां पर वो पब्लिक प्रोग्राम कर सकते हैं, उसे वो कमर्शियल प्लेस कहते हैं। जहां लोग रहते हैं वहां पर पब्लिक प्रोग्राम नहीं किए जा सकते, वहां के कुछ कायदे कानून है गवर्नमेंट के, तो जो अपना मेन सेंटर है वो रेजिडेंशियल एरिया में है तो वहां पर पब्लिक प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो पब्लिक प्रोग्राम करने के लिए उन्होंने ये एक मेडिटेशन म्यूजियम अलग से वो बनाया हुआ है। तो वहां उन्होंने पब्लिक की राखी रखी थी क्योंकि अगस्त मास वैसे हमारे यहाँ तो डेट पर राखी होती है और हम वीआईपीस को राखी बांधने के लिए घर घर उनके घर जाते हैं, उनके स्थान पर जाते हैं, उन सबको बुलाकर के हम यहाँ राखी नहीं बांधते हैं, लेकिन विदेश का सिस्टम ऐसा नहीं है। विदेश में ऐसा है कि वो पूरा ये ईमेल के द्वारा सर्कुलेट कर देते हैं सबको, उनके जो भी संपर्क वाले होते हैं, और वो सब आ जाते हैं। एक दिन उनके लिए राखी रख दी जाती है, फिर उसमें चाहे वो वीआईपी हैं चाहे वो जनरल पब्लिक है, वो सब इकट्ठे ही एक प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो शनिवार को उन्होंने पब्लिक राखी म्यूजियम में रखी हुई थी, और वहां पर ही पब्लिक को टॉक दिया जाता है, माना आधा पौना घंटा जो है हम उनको राखी का महत्व समझाते हैं, उसमें ही हम बाबा का संदेश बाबा का ज्ञान उनको दे देते हैं, और फिर उसके बाद वो राखी बंधवाते हैं। और बहुत प्यार से, जो मैंने अनुभव किया, मैं 2-3 बार गई हूं और हमेशा ही अगस्त मास में जाना होता है तो ये राखी का कार्यक्रम होता ही है, वो इतने प्यार से राखी बंधवाते हैं, और एक एक जना जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, ऐसे होता है कि भाई आपकी राखी पूरी हो गई तो आप चले जाओ, नहीं, वो सब बैठे रहेंगे लास्ट तक, इतना अच्छा उनको अनुभव होता है। और बहुत अव्यक्त स्थिति में वो कार्यक्रम चलता है, एकदम साइलेंस में, फिर वो अपना अनुभव भी सुनाना चाहते हैं, तो कई खड़े होकर के अपना अनुभव सुनाते हैं कि कितना अच्छा उन्हें अनुभव हो रहा था कि उनको जाने की इच्छा नहीं हो रही है इस स्थान से। तो ऐसा 1-2 घंटा वो कार्यक्रम चला, राखी का प्रोग्राम, उसमें करीब 40 लोग आए थे। वहां पर 40 की संख्या आना भी बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है अमेरिका में, और उस प्रोग्राम में ज्यादातर अमेरिकन थे। भारतीय लोग, जो यहाँ के भारतीय लोग वहां रहते हैं, वो सिर्फ 2 थे, बाकी सारे वहां की अपनी जो अमेरिकन पब्लिक थी वो अमेरिकन ज्यादा थे वहां, क्योंकि जो बहन वो सेंटर चलाती है वो अमेरिकन है। कई स्थानों पर ऐसे हैं जहां भारतीय बहनें सेंटर चलाती हैं तो वहां इंडियंस की संख्या ज्यादा है, पर ये बहनें, जो 2 बहनें हैं मुख्य, वो अमेरिकन हैं, तो मैंने देखा कि उनके सेंटर पर लोकल अमेरिकन्स की संख्या ज्यादा है। फिर उसके बाद संडे को सेंटर पर भाई बहनों के लिए, सभी के लिए कार्यक्रम रखा था, और ब्राह्मणों की राखी, ये पब्लिक के लिए राखी थी, लेकिन जो ब्राह्मण भाई बहने हैं तो उनके कनेक्शन में 2-3 सेंटर हैं टोटल, तो सभी तरफ के भाई बहने वहां आ गए और उनके लिए राखी का क्लास, और फिर उसके साथ साथ सभी के लिए राखी का प्रोग्राम, फिर ब्रह्मा भोजन, बाबा को भोग, वो 2 दिन लगाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ गुरुवार को भोग लगता है, लेकिन वो गुरुवार और संडे दोनों दिन भोग लगाते हैं। उसका कारण है कि गुरुवार लोग नहीं आ पाते हैं, तो बाबा का दिन है इसलिए भोग जरूर लगता है, पर संडे को पूरी क्लास होती है तो फिर क्लास को भोग मिले बाबा का, इसलिए वहां संडे को भी भोग लगाते हैं। तो सभी सेंटर्स विदेश में जो हैं वो सप्ताह में 2 दिन भोग लगाते हैं। फिर उसी दिन एक गुजराती परिवार रहता है जो थोड़ा दूर, 2 घंटे पर एक शहर है वहां, वो परिवार वहां काफी सालों से, वह उनका बिजनेस है और अभी 3 साल से वो बाबा के ज्ञान में चलते हैं, तो उनकी इच्छा थी कि जो भी हमारे गुजराती संपर्क वाले हैं उनके लिए एक कार्यक्रम रखा जाए, और हम हिंदी में, क्योंकि मैं यहाँ भारत से गई हूँ, तो हम हिंदी में उनके लिए प्रोग्राम रखेंगे, वो सब हिंदी में सुनना पसंद करेंगे। तो उन्होंने अपने संपर्क के 40-50 गुजराती भाई बहनों को इकट्ठा किया था, और विषय रखा था उन्होंने मेडिटेशन एंड हेल्थ, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो कई बार लोग फिर हेल्थ के विषय पर सुनना चाहते हैं, तो ये विषय रखा था उन्होंने, तो वो 1 घंटा वो रहा, और फिर उनके लिए भी राखी का प्रोग्राम, तो फिर थोड़ा सा राखी के बारे में बता के उनको भी राखी बांधी, तो 2 घंटे ये प्रोग्राम उनके घर में चला। फिर उसके बाद अगले दिन 24 अगस्त तक ये सारे प्रोग्राम हुए, और 24 अगस्त को मुझे पीस विलेज एक रिट्रीट सेंटर है अमेरिका में जो न्यूयॉर्क में है। आप में से कितनों ने पीस विलेज का नाम सुना है? सिर्फ 1 ने। तो जैसे ज्ञान सरोवर है हमारा, ज्ञान सरोवर से भी बड़ा वो जमीन, शांतिवन से भी बड़ी जमीन है वो वहाँ न्यूयॉर्क में, और वहां पर वो अमेरिका के सभी तरफ से जितने भी सेंटर हैं, जैसे अपने यहाँ मधुबन में सब पूरे भारत से भाई बहने आते हैं और वो कार्यक्रम चलते हैं, ऐसे पूरे अमेरिका से वहाँ भाई बहने, जैसे हमारे यहाँ विंग्स के प्रोग्राम भी चलते हैं, शिविर भी चलते हैं, ऐसे वो स्थान बना हुआ है, तो वहाँ पर सब भाई बहने आते हैं और उनकी रिट्रीट या कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन वीकेंड पर होता है सब कुछ वहाँ पर, यानी सैटरडे संडे के बिना कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो दादी जी का जो दिन था वो 25 अगस्त है, वहां पर भी 25 अगस्त को दादी डे पर सुबह से प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसके निमित्त उन्होंने मुझे वहां बुलाया था, क्योंकि दादी प्रकाशमणि जी के साथ मैं काफी वर्षों तक रही हूं, उनके अंग संग रहने का मुझे ड्रामा में बाबा ने ये अवसर दिया है, भाग्य दिया। तो मोहिनी बहन वहां पूरे अमेरिका के जितने भी सेंटर्स चलते हैं उनकी वो डायरेक्टर हैं, साउथ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और वो न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, तो जब वो बाहर सेवा पर नहीं होते हैं तो वहां न्यूयॉर्क में ही होते हैं। तो मोहिनी बहन भी वहां आए हुए थे, उसके पहले वहां कॉल ऑफ टाइम की रिट्रीट चल रही थी, तो गायत्री बहन, कला बहन, डोरोथी बहन, आप शायद नहीं जानते होंगे इन सब बहनों को, लेकिन ये बहनें भी वहां सब पीस विलेज में थे। तो सुबह मुरली क्लास था और मुरली क्लास के बाद फिर झंडारोहण रखा था उन्होंने दादी के नाम से, और सभी ने वो झंडारोहण किया, और दादी जी के यादगार में एक उन्होंने लोटस मेमोरियल बनाया है। लोटस माना कमल के फूल के समान, जैसे शांतिवन में अपना तपस्या धाम है वो कमल के फूल के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसे ही कमल का फूल लेकिन लकड़ी का बनाया है, क्योंकि वहां पर हर चीज लकड़ी की होती है, लकड़ी के ही घर बने हुए भी होते हैं, सीमेंट के घर नहीं बनाते हैं विदेश में, तो लकड़ी का वो कमल का फूल बहुत सुंदर बनाया, और उसकी जो पत्तियां हैं उसको बैठने के सीट भी बनाई है, तो वहां बैठ करके आप बाबा को याद कर सकते हैं शाम, और इतना अच्छा मौसम होता है वहां, अगस्त के दिनों में वहां गर्मी के दिन होते हैं और उस तरफ बहुत हरियाली है, तो बहुत ही सुंदर जगह है पीस विलेज बाबा का जो स्थान है वो, और उसमें बीच में ही एक छोटी लेक भी बनी हुई है, जैसे ज्ञान सरोवर को भी हम ज्ञान सरोवर क्यों कहते हैं, क्योंकि बीच में एक लेक बना रखी, सरोवर बना रखा है, तो वहां पर एक नेचुरल लेक है वहां बीच में बनी हुई है पीस विलेज में। फिर उसके बाद बाबा को भोग लगाया गया, मोहिनी बहन संदेशी भी हैं, तो दादी का और बाबा का संदेश भी था, और उसके बाद उन्होंने तीन जनों का अनुभव रखा था दादी के साथ का, तो उसमें मैंने सबको 10-10 मिनट दिया था उन्होंने, तो मैंने दादी के साथ का अनुभव सुनाया, और एक कला बहन जो वहां ही संभालती हैं पीस विलेज संभालती हैं उन्होंने सुनाया, और एक गायत्री बहन जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा ऑफिस है वो संभालती हैं, वो न्यूयॉर्क में एक सेंटर भी है लेकिन विशेष यूएन की सेवा, यूनाइटेड नेशंस की जो सेवा है उसके निमित्त वो गायत्री बहन है, और उन्होंने दादी से बहुत पालना ली हुई है, तो वो उन्होंने भी अपना वो अनुभव सुनाया। और इस कार्यक्रम के बाद मोहिनी बहन का जन्मदिन मनाया गया, 15 अगस्त उनको वैसे जन्मदिन होता है, लेकिन क्योंकि 25 अगस्त को सारे भाई बहने इकट्ठे हुए थे, पूरे न्यूयॉर्क के काफी भाई बहने आए हुए थे उस समय, तो फिर उन्होंने ऐसा निश्चय किया था कि हम उस दिन जब सभी इकट्ठे होंगे तब हम जन्मदिन मनाएंगे। फिर उसके बाद सबका ब्रह्मा भोजन था, तो उन्होंने केक काटा, सबको सौगात भी दी, दोनों के निमित्त, जन्मदिन के भी निमित्त और दादी जी का भी डे था, तो जैसे मधुबन में भी सबको सौगात मिलती है, तो मैंने देखा कि वो पूरा जैसे मिनी मधुबन है, बिल्कुल भासना भी मधुबन जैसी आती है, जो भी भाई बहने वहां आते हैं। एक हमने देखा दादी जानकी जी ने भी लंदन में हम जाते हैं ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में, और वहां भी एक रिट्रीट सेंटर है, ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर बोलते हैं, तो वहां भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप दूसरे मधुबन में आ गए, दादी ने भी ऐसा तैयार कर रखा, और ये भी वहां पर पीस विलेज में भी हमको वही भासना आती है। फिर अगले दिन जो वहां डोरोथी बहन है, एक पीस विलेज के पास एक गांव है जिसे वो स्टॉकवुड कहते हैं, वो हिप्पी कल्चर जब हुई थी, आप में से हिप्पियों का नाम सुना है किसी ने? हाँ, तो वो उनका गांव माना जाता है, यानी जो हिप्पी शुरू हुए वो वहां से शुरू हुए, और आज दिन तक भी वहाँ हिप्पी रहते हैं। हिप्पी माना उनका रहने का ढंग अलग होता है, बाल लंबे लंबे रखेंगे, फ्री स्टाइल से रहेंगे वो, और बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। माना अपनी रीति से वो, मतलब बाबा को मानते हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो अपनी रीति से भगवान की आराधना करते हैं इस तरह से उनका। और बहुत आर्टिस्ट माना म्यूजिशियन जो शिल्पकार होते हैं, और ये पेंटर होते हैं, अनेक प्रकार के आर्टिस्ट जो हैं वो उस स्थान पर रहते हैं। तो वो भी बड़ा अजीब सा अलग सा अनुभव था। हम लोग वहां गए तो हाँ, तीन चार लोग थे, हम सफेद कपड़ों में थे, तो उनको हमारी आकर्षण हो रही थी, तो सारे हमसे आकर के पूछ रहे थे आप लोग कहाँ से आए हैं, आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हैं। तो फिर जैसे ही हमको इस तरह से देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि ये आगी। फिर उनको हम बताया कि आपके पास में ही यहाँ पीस विलेज है, यहाँ जा सकते हैं। सब हम लेकर गए थे अपना वो कार्ड वगैरह और एड्रेस देने के लिए, तो खुद ही। और किसी एक शॉप में हम चले गए तो वहां पर भी सारे लोग जो हैं वो आकर के हमसे पूछने लगे। तो ऐसे ही भले हम घूमने गए थे, लेकिन फिर भी जैसे बाबा ने सेवा कराई वहां पर। फिर उसके बाद अगले दिन न्यूयॉर्क जाना हुआ। न्यूयॉर्क जो प्रॉपर सिटी है, पीस विलेज थोड़ा सा पौना घंटा बाहर है न्यूयॉर्क से, क्योंकि वो शांति की जगह पर बना हुआ है, रिट्रीट सेंटर है, लेकिन न्यूयॉर्क तो पूरा शहर है। न्यूयॉर्क की जो बिल्डिंग्स है, मैनहट्टन अपना मैनहट्टन में सेंटर है न्यूयॉर्क में, और एक हार्मनी हाउस जहां मोहिनी बहन रहती हैं, वो थोड़ा सा मेन शहर से बाहर है। वहां पर जो शहर होता है उसको डाउनटाउन बोलते हैं, जो मुख्य शहर जहां मुख्य बाजार होता है उसको वो डाउनटाउन कहते हैं। मुख्य ऑफिसेस भी सारे शहर के वहां होते हैं, तो वहां पर मैनहट्टन वो जगह कहलाती है, वहां अपना सेंटर है। वहां जाना हुआ और वो पूरा वहां की जो बिल्डिंग्स हैं वो 100-100 मंजिल, कोई भी बिल्डिंग 50 मंजिल से तो कम है ही नहीं। तो आप अगर गली में भी जाएंगे और किसी बिल्डिंग को आप देखने की कोशिश करेंगे तो पूरी गर्दन पीछे हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर्स। आपको ध्यान होगा कई साल पहले न्यूयॉर्क में ही दो ट्विन टावर जो थे उनको एरोप्लेन ने गिराया था। अब उसी जगह पर फिर से उन्होंने ट्विन टावर बना दिए, और वो 100 मंजिल के थे, अब 104 मंजिल बना दी उन्होंने, और भी 4 मंजिल ज्यादा बना दिया है। तो बहुत ही मतलब विशेष स्थान है वो न्यूयॉर्क का, और वहां जो अपना सेंटर चलता है वो भी उन्होंने थोड़ा म्यूजियम बनाया, आर्ट गैलरी उसको बोलते हैं वो लोग, आर्ट गैलरी बनाई है और वहां पर पब्लिक आती है। तो ऐसे एक दिन वहां रहना हुआ, और फिर उसके बाद अगले दिन वहीं से हमारी बस थी, मुझे वापस वाशिंगटन आना था। वाशिंगटन में उसी दिन शाम को एक प्रोग्राम रखा हुआ था स्ट्रेस के ऊपर, पब्लिक प्रोग्राम था मेडिटेशन म्यूजियम में ही। स्ट्रेस तो आजकल सारी दुनिया में सबको है, कोई कहीं भी रहता हो, तो ओवरकमिंग स्ट्रेस ये टॉपिक था, तो उसको लेकर के वहां फिर हम शाम को पहुंचे, वो पब्लिक प्रोग्राम किया। और अगले दिन वहां से मुझे लॉस एंजलिस के लिए निकलना था। 29 तारीख को लॉस एंजलिस में, 28 को मैं वहां से निकली, और 29 तारीख को वहां लॉस एंजलिस में बाहर वालों ने एक राज फेस्ट करके एक प्रोग्राम रखा था, तो उसमें वो लोग बहुत स्पिरिचुअल सॉन्ग गाते हैं। वहां का म्यूजिक बिल्कुल अलग होता है, आप जानते हैं विदेशी म्यूजिक कैसा होता है, पॉप म्यूजिक जैसा होता है, लेकिन दूसरे गीत नहीं, मतलब जैसे फिल्मी गीत जैसे नहीं, वो सिर्फ स्पिरिचुअल गीत भगवान के या देश के, माना कुछ अच्छे प्रेरणा वाले गीत, इस तरह के गीत उन्होंने सिलेक्ट किए थे। और वो पूरा दिन चलने वाला था, उसमें काफी पब्लिक आने वाली थी, यानी 1000 अमेरिकन तक उसमें आने के चांसेस थे, और वो उन्होंने ओपन में रखा था, और उसमें हमको उन्होंने टाइम दिया था 10 मिनट का, कि आप जो हैं मेडिटेशन के बारे में जो भी आप प्रैक्टिस कराओ या बोलो जो भी, 10 मिनट उन्होंने हमको स्टेज पर दिया था। वो शाम के 4 बजे का समय था, तो हम पहुंचे उसके बाद उस दिन मॉर्निंग में, क्योंकि वो तो सैटरडे संडे नहीं था, तो भाई बहने तो थे नहीं क्लास के, तो हमको उसमें जाना था। तो वो जो वॉशिंगटन की बहन थी वो भी मेरे साथ थी, हम लोग कुल 4 बहने थे जो लॉस एंजलिस में गए थे। और वहां की जो बहन थी लॉस एंजेलिस की वहां गीता बहन है, वो मेक्सिको गई हुई थी उस समय, लेकिन इस प्रोग्राम का निमंत्रण जैना बहन जो वॉशिंगटन की है उसको मिला था, क्योंकि वो एक रेडियो शो भी चलाती हैं। और वो रेडियो शो जैसे हमारा ये चलता है एफएम रेडियो, मे रेडियो मधुबन चलता है, ऐसे वहां अमेरिका में भी एफएम रेडियो चलते हैं, तो वो भी एक एफएम रेडियो जो है वो चलाती हैं लोकल में, तो उसमें वो जो इंटरव्यूज लेती हैं जिन वीआईपीस के, उसमें से एक संपर्क में आए उस प्रोग्राम को चलाने वाले, उनका उन्होंने इंटरव्यू किया होगा, तो उसने निमंत्रण दिया कि आप राजफेस्ट में आओ और हमारी पब्लिक को जो है वो मेडिटेशन के बारे में। अमेरिका में मैंने देखा आज के दिन में 90% लोग किसी ना किसी तरह का मेडिटेशन करते हैं, भले हमारा मेडिटेशन नहीं करते हैं, राजयोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत प्रकार के मेडिटेशन किए जाते हैं, तो वो सभी के अंदर अवेयरनेस है कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करने से बहुत फायदा होता है, तो हरेक ने अपना अपना गुरु या अपना अपना कोई ना कोई रास्ता, भले वो अमेरिकन है लेकिन बना रखा है उन्होंने और वो करते हैं तो जानते हैं मेडिटेशन के बारे में। तो हम सुबह 10 बजे से ही उस प्रोग्राम में गए, सुबह 10 बजे से वो शुरू हो गया, उस समय तो बहुत पब्लिक नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि वो केवल गीत ही नहीं हो रहे थे, लेकिन वो अमेरिकन जो लोग होते हैं वो बहुत ओपन और फ्री होते हैं, अगर उनको मन में आ रहा है कि मुझे डांस करना है तो अपनी ही जगह पे खड़े होके, टेंट भी नहीं लगा रखा था उन्होंने, पूरा ऐसे बहुत पेड़ थे जिस गार्डन में उन्होंने प्रोग्राम रखा था वहां काफी पेड़ थे और बहुत छाया थी, तो वहां सब लोग कोई अपनी चादर बिछा के बैठा था, कोई अपनी अपनी कुर्सियां लाया था, उन्होंने ऐसे पूरा अरेंज भी नहीं किया था कि कुर्सियां लगाकर पब्लिक को दी, नहीं, अपना अपना प्रबंध सबने किया हुआ था, सिर्फ स्टेज का प्रबंध ऑर्गेनाइजर्स ने किया था, स्टेज पर जो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा लगाया था गीत गाने वालों के लिए और उनके जो कलाकार वगैरह आए हुए थे उनके लिए स्टेज के पीछे उन्होंने सारी व्यवस्था दी थी, तो हम लोगों को भी उन्होंने व्यवस्था दी थी, उसके पीछे ही उस गार्डन के पीछे ही एक होटल था और होटल में एक कमरा उन्होंने दिया कि पूरा दिन है अगर आपको रिलैक्स होना है या रूम पर जाने की इच्छा है तो हम जा सकते हैं ऐसे करके, लेकिन हम लोग वहां बैठे क्योंकि ऐसे ही होता है, हमारी वाइट ड्रेस होती है तो वाइट ड्रेस ही अपने आप में कुछ परिचय देती है लोगों को, क्योंकि उनकी ड्रेस विदेशियों की ड्रेस बिल्कुल अलग होती है और हम इंडियंस भारतीय लोग जो हैं वो अलग प्रकार की ही ड्रेस पहनते हैं तो बिल्कुल अलग ही नजर आते हैं उन लोगों से। तो ऐसे थोड़ा समय हम वहां बैठे पर उनका सारे गीत तो इंग्लिश में थे, वो सारा वो पॉप म्यूजिक था उनका, लेकिन फिर हम थोड़े समय के बाद स्टेज के पीछे चले गए, हमने सोचा चलो उनकी सेवा करते हैं जो आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं और जो अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। तो उसमें एक जो मेन भाई था जो पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहा था वो गुजराती था, लेकिन वो काफी सालों से अमेरिका में ही रहते हैं, उनके पीढ़ियों से वो परिवार जो है वो अमेरिका में रहता है, तो उसको हिंदी नहीं आती थी, उस भाई को इंग्लिश ही बोलता था वो भाई, और वो बहुत प्रसिद्ध है वहां अमेरिका में, उसका काफी नाम है, उसने कई किताबें वगैरह भी लिखी हुई हैं। तो हम उनसे मिले और उनसे हम बाबा का जो परिचय अपने ज्ञान के बारे में उनसे हमने बातें की, बहुत अच्छा लगा उनको, और यहाँ माउंट आबू आने का भी उनको निमंत्रण दिया। ऐसे ही वहां पर 8-10 लोग और थे और जो मेन थी बहन वो अफ्रीकन, देखने में अफ्रीकन लगती थी पर रहती वो अमेरिका में ही है, जिसने ये प्रोग्राम अरेंज किया था उसने भी बहुत प्यार से हम सबकी बातें सुनी, तो एक बहुत अच्छा एक घंटे का टाइम जो है वो हम स्टेज के पीछे रहे। फिर जब 4 बजे हमारा टर्न आया तो हम चारों ही बहनें स्टेज पर गए, तो 5 मिनट जैना बहन ने बोला और फिर 5 मिनट हमने मेडिटेशन कराया, तो इतना सब सारे दिन से वो डांस गाना चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि बाबा की मदद होती है वो ऐसा वाइब्रेशन बनता है, पूरा एकदम साइलेंस हो गया, सारी पब्लिक जो है वो पूरा 10 मिनट एकदम जैसे साइलेंस में बैठ गई, जो लोग खड़े भी थे वो भी बैठ गए क्योंकि वो गार्डन था, कोई घूम रहे थे कोई चल रहे थे, है ना, उस तरह से ही वो सुन भी रहे थे और डांस भी कर रहे थे, लेकिन सब जो जहां थे वो या तो बिल्कुल शांति से खड़े हो गए नहीं तो वो अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तो वो एक अच्छा एक बाबा ने अनुभव कराया। तो वो 1000 जो वहाँ, मैंने कहा ना कि वहाँ 50 भी आना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इतनी पब्लिक के बीच में एक उनके स्टेज पर हमें बुलाया, ये वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। नॉर्मली तो हम प्रोग्राम करते हैं, फिर बाद में अगले दिन हमें दूसरी जगह जाना था। एरिजोना एक स्टेट है, लॉस एंजलिस जो जगह है वो अमेरिका की वो जगह है जैसे भारत में बॉम्बे है। बॉम्बे को बॉलीवुड नगरी कहते हैं, बॉलीवुड माना जो फिल्म के सारे कलाकार हैं वो सब वहां रहते हैं ना, इसीलिए बाबा उसको माया नगरी भी कहता है। तो ऐसे ही वहां अमेरिका के जो भी हॉलीवुड, उसको यहाँ बॉलीवुड कहते हैं, वो हॉलीवुड है, हॉलीवुड पूरा, और उसके जो भी कलाकार हैं, जो भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो सब लॉस एंजलिस में रहते हैं और वहां ही स्टूडियोज वगैरह बने हुए हैं और उसकी सबकी शूटिंग्स वहां होती हैं। तो बहुत प्रसिद्ध स्थान है वो, अमेरिका के 3-4 शहर बहुत प्रसिद्ध हैं, एक न्यूयॉर्क है, एक वॉशिंगटन है, एक लॉस एंजलिस है, ऐसे ही सैन फ्रांसिस्को, ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहां के शहर हैं, तो लॉस एंजलिस उनमें से एक है। तो उसके पास ही एक एरिजोना स्टेट है जो डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान है, ये तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो अमेरिका का रेगिस्तान है वो तो बहुत बड़ा है, उसके आगे भारत का रेगिस्तान तो कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका में भी सभी प्रकार का की प्रकृति के रूप दिखाई देते हैं, जैसे भारत में भी हम देखते हैं कहीं पहाड़ हैं तो कहीं जैसे रेगिस्तान है, कहीं बहुत हरियाली है, तो ऐसे ही वहां पर भी है। साउथ की तरफ जाएंगे, साउथ अमेरिका में तो पूरा ऐसे ये रेगिस्तान है, और वहां के जो कैक्टस होते हैं, मैंने देखा भारत के जो कैक्टस होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन वहां के कैक्टस इतने ऊंचे ऊंचे जैसे कि बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े कैक्टस हैं वहां रेगिस्तान में। तो वहां पर एक ग्रैंड कैनियन नाम से एक जगह है, आप में से किसी किसी ने सुना भी होगा, वो एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे हम ताजमहल को विश्व के आश्चर्य में मानते हैं, विश्व के 7 आश्चर्य हैं ना, उसमें से एक ताजमहल है, ऐसे वो भी एक विश्व के आश्चर्य माना जाता है। तो उस स्थान पर हम गए और वो सचमुच ही आप अगर देखें तो ऐसे मुंह खुला रह जाएगा, मतलब प्रकृति के भी कई अद्भुत रूप हम देखते हैं, वो नेचुरल बना हुआ है, उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, लेकिन ऐसा कहते हैं वो, जब वहां जो गाइड लोग समझाते हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो वो एरिया है वो जमीन अमेरिका में नहीं थी, वो एक अलग से आइलैंड होता है जैसे टापू होते हैं, बाद में धरती में जब हलचल होती है समुद्र में, जैसे सुनामी आती है, तो वो जमीन जो है वो इधर आकर के लग गई, तो उससे वो कैनियन बनी हुई है। कैनियन माना क्या बोलेंगे, एक जैसे कटोरा किसी ने बना दिया हो जमीन के अंदर, है ना, इस तरह का वो बना हुआ है, बहुत गहरा, और लेकिन वो पूरी चट्टान है, चट्टान के अंदर जैसे कटोरा बना हुआ है, और उसके अंदर पूरा जैसे किसी ने तराशा हो, ऐसे अलग अलग रंग की परतें हैं, और उसमें मतलब कैसे बोलेंगे, बहुत कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं, वो इतना सुंदर लगता है देखने में, और एकदम नीचे नदी बहती है उस कैनियन के, वैली जैसे होती है उसके, बिल्कुल बहुत गहरा है वो, 100 फीट गहरा होगा समझो, और उसके नीचे नदी बहती है, तो नदी ऐसे लगती है ऊपर से देखने में जैसे कि एक छोटा सा नाला बह रहा हो, है बहुत बड़ी नदी, वो कोलोराडो रिवर है उसका नाम, और कहते हैं कि वो इतना जो गहरा हुआ है वो नदी के पानी की वजह से, नदी का पानी भी जो है उसको काटता है, क्योंकि पानी बहता बहता है वो चट्टानों तो जब हमने भी वो देखा वो स्थान, तो हम बाबा के बच्चे तो जब भी ऐसे स्थानों को देखते हैं तो फिर हम सतयुग को याद करते हैं, क्योंकि बाबा ने सतयुग के बारे में हमें इस तरह की बातें बताई हैं कि पहाड़ी भी ऐसी होगी जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के आकार होंगे ना, जैसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कोई पहाड़ी कुट्स को टॉड रॉक कहते हैं, कोई कैमल रॉक है, तो इस तरह से तो प्रकृति के जो नजारे होंगे वो भी इतना सुख देने वाले होंगे। तो हमने सोचा देखो कलयुग में भी आज प्रकृति कहीं कहीं इतनी अद्भुत है, तो सतयुग में तो कितनी वंडरफुल होगी, तो बाबा हमारे लिए कितनी अच्छी दुनिया बना रहे हैं। ऐसे वहां अमेरिका में ये देखने में आता है कि प्रकृति जो है, खासकर जब नॉर्थ में जाते हैं तो बहुत ही हरियाली है, कहीं भी ऐसा नहीं है जहां हरियाली आपको नहीं दिखाई देगी, या तो घने जंगल है नहीं तो फिर पूरा घास ऐसी होती है जैसे कि घास की ही कालीन बिछी हुई है या चादर बिछी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए उसको नई दुनिया कहते हैं क्योंकि 500 साल की ही सिर्फ हिस्ट्री है, और वहां की आत्माएं भी यहां की तुलना में सत्वप्रधान, कहेंगे सत्वप्रधान तो नहीं लेकिन आज की स्थिति में तो वो रजो ही कही जाएंगी, लेकिन फिर भी बेहतर है। भारत सबसे पुरानी संस्कृति है, सतयुग से लेकर अब तक सबसे तमो प्रधान ये भूमि हो चुकी है, इसीलिए शिव बाबा को फिर से भारत में ही आना होता है सतयुग की स्थापना के लिए। तो वहां जाकर ये बात समझ में आती है कि हाँ बाबा को भारत में ही आना है, क्योंकि ज्यादा आवश्यकता कहाँ है, भारत में ही ज्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे वो स्थान देखा। फिर ऑन द वे जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक दूसरा स्थान था जिसे सिदोना नाम था उसका, वहां पर लाल रंग की चट्टाने, ये भी बहुत सुंदर, हर चट्टान माना जैसे पहाड़ है, यहाँ के पहाड़ अगर हम देखेंगे तो भूरे रंग के पत्थर हैं, लेकिन वहां के पहाड़ पूरे रेड कलर के एकदम, और एकदम जैसे पूरा एक राउंड में वो पहाड़ बने हुए हैं, और उसको वो लोग वॉर्टेक्स कहते हैं। वॉर्टेक्स का मतलब होता है जहां पर पृथ्वी की सबसे अधिक ऊर्जा माना जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां सबसे पावरफुल है, तो उस स्थान पर जाने से ही आप उसको महसूस करते हैं, माना मन को शांत करने की जरूरत नहीं है, मन अपने आप शांत हो जाएगा, मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा, वो बहुत शक्ति है उस भूमि के अंदर। तो हमने महसूस किया सचमुच जब हम वहां गए, जिसको वो लोग वॉर्टेक्स कहते हैं, तो बिल्कुल वो एनर्जी जैसे फील होती है, उसकी ताकत जो है महसूस होती है। और इसीलिए वहां भी बहुत स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, जिन लोगों को साधना करने की इच्छा है या आप एकांत में भगवान की याद में अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो खासकर रिटायर्ड लोग जो इस तरह से सोचते हैं, हमने देखा उस स्थान पर वो लोग ज्यादा बसे हुए थे, तो वो भी बहुत सुंदर एक स्थान था जो वहां का एक प्रसिद्ध स्थान है। फिर उसके बाद हम वापस आए लॉस एंजलिस, और वहां पर सैटरडे संडे को जैसे भाई बहनों के प्रोग्राम अपने रखते हैं, तो उन्होंने सभी अपने, उनके कनेक्शन में भी 3-4 सेंटर हैं, तो सभी सेंटर्स के भाई बहनों को उन्होंने उस दिन वहां मेन सेंटर पर बुलाया हुआ था। तो संडे के दिन भाई बहनों की क्लास भी थी, और जैसे बताया वहां भोग भी होता है, ब्रह्मा भोजन होता है, और हमारे साथ जो बहनें थी उन्होंने भाई बहनों को कुछ गेम्स खिलाए, वैल्यू गेम्स जैसे बोलते हैं, कुछ ऐसे जिससे कि कुछ उनको संदेश मिले या कुछ पुरुषार्थ की प्रेरणा मिले, कुछ इस तरह के गेम्स उन्होंने खिलाए। और उस दिन ड्रामानुसार मुरली मधुबन निवासियों के ऊपर थी, बीच में कोई संडे एक मधुबन निवासियों की मुरली थी, तो उस दिन हमने वो मुरली पढ़ी। तो मैं क्योंकि मधुबन से गई थी, तो जैसे कि ड्रामा में एक वो भी एक विशेष हो गया कि मधुबन निवासी ही मधुबन की वो बाबा ने जो मधुबन निवासियों के प्रति मुरली चलाई है वो पढ़ा, तो एक अपना अनुभव भी हमने वो भाई बहनों को सुनाया, तो बहुत अच्छा 10 बजे तक वो कार्यक्रम वहां सेवा केंद्र पर चला। फिर उसके बाद एक और फेस्टिवल था वहां पर, उसको भक्ति फेस्टिवल कहते हैं, वो लॉस एंजलिस से 2 घंटे की दूरी पर एक स्थान है, वहां रखा था उन्होंने। और वो भक्ति फेस्टिवल में भी हमको निमंत्रण दिया था उन्होंने कि वो हमें 9 बजे, सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे, तो 9 बजे वो उन्होंने हमें 5 मिनट दिया और शाम को 4 बजे आधा घंटा दिया, ये 2 टाइम आप बोलेंगे। और वो भी ऐसे ही ओपन में प्रोग्राम था, लेकिन वहां उन्होंने टेंट लगाया था, और वहां पर जो भक्ति, क्योंकि भक्ति फेस्टिवल था तो अंग्रेजी गीत नहीं, जो भक्ति गीत, हिंदुस्तानी भक्ति गीत, जो देवी देवताओं के भक्ति गीत, देवी देवताओं की पूजा से संबंधित वो सारा था, और उसमें अमेरिकन थे, तो ये एक विशेषता थी। मैं फिर आगे थोड़ा सुनाती हूँ, ट्रैफिक कंट्रोल। तो वहां भी हमने देखा कि ज्यादा जो पब्लिक थी वो अमेरिकन थी, और जो गाने वाले थे वो भी अमेरिकन थे, लेकिन जैसे भारत के साधु लोग होते हैं कैसे भगवा कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे हमने देखा कि वो अमेरिकन साधु बने हुए थे काफी लोग, और वो लोग हिंदी में गीत गा रहे थे अच्छी तरह से, मंत्र भी हिंदी, जैसे संस्कृत में मंत्र बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो एक तो इतनी मस्त होकर के ओम नमः शिवाय का गीत गा रहा था कि सारे के सारे लोग उसी पर, अमेरिकन लोग जो सामने थे वो उसी पर झूम रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तो ये मेरे लिए भी बहुत नया दृश्य था क्योंकि हमने कभी विदेशियों को इस तरह से नहीं देखा। चलो हम भारत के लोग तो महत्व समझते हैं, शिव को जानते हैं, उस मंत्र को भी जानते हैं, तो फिर भी भारत के लोग जो हैं वो इस तरह से झूम झूम के कभी भी ऐसे नाचते नहीं हैं। ठीक है, कीर्तन करेंगे तो ढोल मंजीरा बजाएंगे उतना ही, लेकिन ये सीन जो था वो बिल्कुल ही न्यारी थी एकदम। तो हम भी काफी समय तक उनको देखते रहे और सकाश देते रहे बाबा की, देखो भले ही भक्ति के रूप में ही सही लेकिन भगवान को पाने की इच्छा तो इन आत्माओं को ही को भी है, और इन आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो भी वर्षा बाबा से मिलना चाहिए वो अवश्य मिले। तो जो 9 बजे का था उस समय तो ज्यादा कुछ करने का हमें चांस नहीं था क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही दिया था उन्होंने, तो मैं और जैना बहन हम स्टेज पर गए और हमने सिर्फ उनको मेडिटेशन कराया। लेकिन शाम को 4 बजे जो आधा घंटा का समय हमें दिया था, ज्यादातर जो था वो शिव का था, माना ओम नमो शिवाय वाला जो जाप था वो बहुत ज्यादा था। तो हमने ऐसा प्लान किया कि हम ओम का अर्थ इनको बताएंगे, जैसे ओम शांति हमारे यहाँ विशेष है ना, तो हमने सोचा इनको ओम शांति का अर्थ बताएंगे और फिर ओम जैसे ध्वनि करते हैं। तो उन्होंने एक अपने रेडियो पर एक लॉन्च किया है, फेसबुक भी चलती है आजकल सोशल मीडिया, तो उन्होंने एक ओम चैलेंज करके बनाया इसी के लिए, इसी कार्यक्रम के हिसाब से कि हम 60 सेकंड में एक सांस में ओम बोले। 60 सेकंड माना एक सांस में आप ओम बोलते हैं, लंबा सांस खींच लें ऐसे करके फिर ओम बोलना शुरू करें ओम, तो वो 60 सेकंड तक चलना चाहिए। और अगर नहीं बोल पाते हैं तो फिर इसका मतलब आप नहीं कर पाए उसको, तो फिर आपको किसी और को नॉमिनेट करना पड़ेगा कि अच्छा मैं नहीं कर पाई लेकिन अब ये करें मेरी जगह, मतलब मेरे स्थान पर ये करें, फिर वो कर पाते नहीं कर पाते, अगर वो नहीं कर पाए तो वो किसी और को, तो ऐसे वो स्प्रेड होगा। और फिर ये उन्होंने कहा कि हम विश्व शांति के लिए ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो ऐसे ही ये फैलता जाएगा, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो पूरे अमेरिका में भी फैल सकता है क्योंकि वहां तो सब लोग ये मीडिया यूज करते हैं जो सोशल मीडिया होता है, भारत में शायद इतना नहीं लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा। तो ये कहा कि हम इसकी लॉन्चिंग भी कर देंगे, माना यहीं से इसकी शुरुआत कर देंगे और ये ओम का अर्थ भी लोग बहाने हम बाबा का ज्ञान भी इन आत्माओं को दे पाएंगे। तो ऐसे हमने निश्चय किया, हम 3 लोग थे तो हम 10-10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट हम, मैंने ओम के बारे में सारा बताया उनको, ओम का महत्व बताया, ओम का शिव से क्या संबंध है, फिर ओम जाप करने से हमको क्या फायदे होते हैं, फिर उसके बाद बहन ने उनको मेडिटेशन कराया जो हमारा अपना शांति आत्मा का स्वधर्म है और कैसे हम उस शांति स्वधर्म का अनुभव करते हैं और ये ओम कैसे हमें शांति का अनुभव कराता है, ऐसे करके उन्होंने वो योग कराया। और फिर वो भाई ने सारा ये बताया कैसे आप करेंगे, एक भाई था हमारे साथ, कि कैसे आप ओम का जाप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 60 सेकंड आप सांस खींचें और फिर ओम को बोल के देखें। हाँ, आप लोग बोल के देखेंगे बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। हाँ, लंबी सांस ले, एक लंबी सांस लो और बोलो अभी ओम 25 सेकंड कौन बोल रहा है अभी तक मैक्सिमम 25 सेकंड तक बोल पाए ना, 60 सेकंड बोलना बहुत मुश्किल है, तो अभ्यास के बाद इसलिए उसको चैलेंज कहा है ना, ये एक चुनौती है कि हम 60 सेकंड तक वो ओम कर पाए। तो उन लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब हमने ये पूरा किया, तो उसके बाद बहुत लोगों ने हाथ उठाया, जो पब्लिक बैठी थी सामने वो भी लगभग 1000 के करीब पब्लिक होगी और ज्यादातर सब अमेरिकन थे, तो उन्होंने कहा हम बोलना चाहते हैं, फिर एक एक करके वो आते गए, तो हमको आधा घंटा मिला था लेकिन इसमें 1 घंटा हो गया बहुत लोगों ने ट्राई किया उस चीज को, तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। उस दिन वो भक्ति फेस्टिवल का था और फिर उसके बाद हम वापस आ गए, फिर लॉस एंजलिस से दूसरे दिन हम निकले और वॉशिंगटन आए वॉशिंगटन से अगले दिन हमारी फ्लाइट थी, लेकिन सुबह के समय जो हमारे पास था वहां पर जो मंत्री होते हैं उसको सेनेटर बोलते हैं, जैसे यहां पर हम मिनिस्टर बोलते हैं, वहां मिनिस्टर नहीं बोलते, सेनेटर बोलते हैं। तो वॉशिंगटन क्योंकि राजधानी है और वहां पर सभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जैसे हम बोलते हैं, ऐसे सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है वो सारी उनकी वहां रहती है, राष्ट्रपति भी वहां वॉशिंगटन में रहते हैं, तो उनका वो व्हाइट हाउस जिसमें राष्ट्रपति रहते हैं वो भी वहीं बना हुआ है, और हम संसद भवन बोलते हैं उसको कैपिटल हिल बोलते हैं। तो वहां पर एक जो सेनेटर थे और एक मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स करके, उनसे हमारी मुलाकात पहले से फिक्स की हुई थी उस दिन, तो हम उनसे मिलने के लिए गए। तो वो जो इंटरनेशनल अफेयर्स वाले थे वो यहां इंडिया होकर के गए थे कुछ समय पहले, कलकत्ता में किसी कार्यक्रम में उनका आना हुआ था, तो उनको बहुत अच्छा वो अनुभव हुआ कलकत्ता में जो उन्होंने किया था। फिर जब उनको पता चला मैं इंडिया से आई हूं, मेरे साथ वॉशिंगटन वाली बहन थी और मैं थी, तो आधा घंटा दिया उन्होंने, वैसे हमारा 5 मिनट का समय था उनके साथ, और हमको उनको गिफ्ट देनी थी, सौगात देनी थी, थोड़ा निमंत्रण देना था, बस इतना ही, लेकिन आधा घंटा तक वो हमसे सुनते रहे। अपने आप ही उन्होंने मेडिटेशन के बारे में क्वेश्चन किया और फिर हमको समझाने का उनको मौका मिला, तो वो उनसे मुलाकात भी बहुत अच्छी रही। और फिर उसी दिन शाम को जो है हमें वापस इंडिया के लिए निकलना था। तो हम देखते हैं कि जहां भी हम जाते हैं बाबा हमसे अच्छी तरह से सेवा कराते हैं, फिर वो चाहे विश्व की कोई भी आत्माएं हो। और बिल्कुल ऐसा लगता है कहीं भी जाकर के कि ये अपना ही परिवार है, जो विश्व अपना परिवार है, वो भासना आती है कि सभी आत्माएं हम एक ही परमात्मा की संतान हैं, फिर चाहे वो रंग, भाषा, देश, धर्म कोई भी हो। लेकिन जब हम सचमुच बाबा के ज्ञान को यूज करके उस तरह से उनकी सेवा करते हैं तो वो आत्माएं भी उसे महसूस करती हैं, वो अपनापन उन्हें भी महसूस होता है। तो बहुत ही अच्छा ये अनुभव रहा। ओम शांति।